सर्वस्याहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। अब क्या हुआ? अब प्राण के बाद में अब आ जाओ मन बुद्धि पर। देखो अपना शरीर के अंदर पहुंचे, शरीर के अंदर से प्राण की क्रियाएं इनको देखा, यहाँ उपासना की, अब उसके बाद मन बुद्धि में ज्ञान इंद्रियों ज्ञान शक्ति पर आ जाओ। अब ये ज्ञान शक्ति का संचालक कौन है? वही परमात्मा। वही परमात्मा यहाँ मन बुद्धि में बैठा हुआ ज्ञान रूप में है, ज्ञान शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। हम जो कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, भूल रहे हैं, ये सब जितना भी कार्य हो रहा है वो ज्ञान शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए बोले भगवान की जो है, देखो कि आप अपने हृदय में आ जाओ। और अब कहते देखो जब हृदय में तुम आ जाओगे, जब अपने ये देखोगे कि मन बुद्धि को देखोगे और मन बुद्धि की क्रियाओं को देखोगे, तो आप अपने आप ही अपने हृदय में आ जाओगे। हृदय में पहुंचने का तरीका भी यही है, जब आप अपने मन से मन बुद्धि की ही क्रियाओं को देखें, उनके अतिरिक्त तो किसी बाह्य जगत की वस्तु का न स्मरण करें और न उसको रिसीव करें, बाह्य जगत की वस्तुओं को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण भी न करें, स्मरण भी न करें, तो उस समय मन बुद्धि कहाँ होते हैं? उस समय मन बुद्धि हृदय में होते हैं, उसी का नाम हृदय है। उस समय जब आप भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सम्मिष्ट हो, और मैं तो सबके हृदय में विद्यमान, वैसे तो बता दिया सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, सब जगह है, सब जगह औषधि में, वनस्पति में, पृथ्वी भर में, सब जगह है। लेकिन अब कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सम्मिष्ट हो, मैं सबके हृदय में अंतर में व्याप्त हूं, सम्मिलिष्ट होकर के व्याप्त हूं, सब हृदय में तादात्म्य किए हुए बैठा हुआ। तो ये इसलिए कहा कि अब आपको अब भगवान ने धीरे धीरे हृदय तक पहुंचा दिया और बता दिया कि देखो यही मैं हूं, यही हूं कि मैं यहां, मैं तुमको देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हूं। और कहीं तो तुम केवल शास्त्र के आधार के ऊपर उपासना करते रहे, स्मरण करते रहे कि परमात्मा सूर्य को प्रकाशित कर रहा है, एक परमात्मा है सूर्य को प्रकाशित कर रहा है। अब अपने हृदय में उस प्रकार से नहीं कि एक परमात्मा है, एक परमात्मा जी ये कर रहा है वो कर रहा, अब यहां तो हृदय में परमात्मा को देखो। इसलिए उपासना अंत में हृदय में पहुंच करके उपासना फिर ज्ञानात्मक हो जाती है। परिमार्ग तद्यम के माने क्या था? तथा पदम तद परिमार्ग तद्यम, उसके बाद में उस परमात्मा का परिमार्गन करो, परिमार्गन करो ना खोज करो। अब उस परमात्मा, भगवान ने बता दिया परमात्मा कहाँ है, उसकी कहाँ खोज करें, तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके उपासना करते करते अंतर्मुखी बन जाओ और हृदय तक पहुंच जाओ, हृदय में ठहरने का अभ्यास करो और फिर उसी हृदय में परमात्मा को खोज लो, उसी हृदय में परमात्मा को देख लो। ये बोले तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्ता स्मृति ज्ञान मतोहनम छ। वहां पर क्या हो रहा है मन बुद्धि में? परमात्मा ही के कारण से स्मृति ही उसी कारण हो रही है और ज्ञानम अपोहनम छ, और ज्ञान का अपोहन भी हो रहा है। वैसे तो सीधी सी बात यह है कि अपने मन बुद्धि में जो बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। परमात्मा के ही प्रभाव से मन बुद्धि में विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आती है, और फिर वो जो हमने उनको ग्रहण किया तो उनके हमारे चित्त के ऊपर उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है, स्टोर हो जाते हैं वो, और फिर उसके बाद फिर जब हम याद करें तो फिर वो याद भी आ जाते हैं। तो याद किस बल पर आते हैं? उसी मन बुद्धि की चेतना के बल पर ही, ज्ञान शक्ति के बल पर ही पुराना ज्ञान याद भी आता है। इतनी बात एक बात तो यह है, इसलिए स्मृति ही, जब भगवान ने कह दिया कि देखो जो स्मृति हो रही है वो तो मेरे ही कारण हो रही है, तो स्मृति तो तभी होती है जब पहले कोई अनुभव हो, बिना अनुभव के तो कोई स्मृति होती नहीं। तो स्मृति यदि परमात्मा कराने वाला है परमात्मा की शक्ति से ज्ञान शक्ति होती है, स्मृति होती है, तो स्मृति के पहले जो अनुभव हुआ था वस्तु का, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान भी परमात्मा की ही शक्ति से हुआ, ये इम्प्लाइड है इसमें, स्मृति में इम्प्लाइड है। देखो पहचाना उसको, अगर ये कह देते कि देखो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमारे मन बुद्धि में ज्ञान आ रहा है, उस ज्ञान को परमात्मा हमें ज्ञान करा रहा है, ज्ञान शक्ति के द्वारा हो रहा है, तो अलग से ये बताना पड़ता तो उस ज्ञान का फिर क्या होता है, स्टोर होता कि नहीं होता है, फिर उसकी याद आती कि नहीं याद आती है, वो अलग से बताना पड़ता। लेकिन जब बता दिया कि जो स्मृति होती है वो परमात्मा की ही ज्ञान शक्ति के कारण से होती है, तो इसके माने है स्मृति तभी होगी जब कोई स्टोर हाउस में पड़ा हो, तब उसी का स्मरण आए। और स्टोर हाउस में पहुंचा कैसे, जब तक हमारा अनुभव नहीं हुआ तब तक स्टोर हाउस में पहुंचेगा नहीं, इसलिए तीनों कार्य जो है वो चेतन शक्ति के द्वारा, ज्ञान शक्ति के द्वारा हमारे अंदर संपादित हो रहे। एक बात तो ये तो हो गया मत्ता स्मृति ही। अब दूसरी बात देखो, ज्ञानम अपोहनम चय, जो ज्ञान का अपोहन है मैंने ज्ञान जो समाप्त हो जाए, लय हो जाए, ये कार्य भी नहीं कर रहा हूं। अब ये कहकर के क्या बताया यहां पर कि देखो एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्नावस्था है, एक सुषुप्तावस्था है। जागृत अवस्था में हमको ज्ञान हो रहा है, स्मरण हो रहा है, तीनों कार्य हो रहे हैं, हम कुछ ज्ञान प्राप्त भी कर रहे हैं, कुछ हमारे अंदर उसका स्टोर भी हो रहा है, और फिर कुछ हम स्मरण भी कर रहे हैं। जागृत अवस्था में ये होता रहता है, स्वप्नावस्था में भी और कुछ नहीं तो स्मरण तो आता ही रहता है, वो स्मरण रूप ही स्वप्न है, वो भी वहां चला करता है। लेकिन एक तीसरी अवस्था में भी जब हम पहुंचते हैं तो परमात्मा हमको सुषुप्तावस्था में भी ले जाता है, और सुषुप्तावस्था में यह ज्ञान शक्ति को बीज रूप में स्थापित करके वहां ज्ञान अपोहन कर देता है, माने सुषुप्तावस्था में कुछ भी अनुभव में नहीं आता। तो ये कुछ भी अनुभव में ना आना भी एक ज्ञान की अवस्था है, ऐसा नहीं कि ये उस समय ज्ञान कुछ नहीं होता। अरे कुछ ज्ञान नहीं होता, इसका ज्ञान तो होता ही है, ये ज्ञान भी उस समय सुषुप्तावस्था में विद्यमान है। तो जब ये कहते हैं स्मृति ज्ञान में अपोहन, तो सुषुप्तावस्था का वर्णन करते हैं। जब वो सुषुप्तावस्था का वर्णन करते हैं इसके माने स्वप्नावस्था और जागृतावस्था का उसी में समाहार हो गया। तो इसके तात्पर्य यह हुआ कि देखो जो हमारे मन बुद्धि में ज्ञान शक्ति है वो हो एक तो जागृतावस्था में तीन भागों में बटी हुई है। पहले हमने ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसको हमने अपने अंदर स्टोर किया, फिर उसका हमने स्मरण किया, एक ज्ञान दी है। और दूसरी बात ये कि वो ज्ञान की अवस्था तीन प्रकार की, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं तीन क्यों है, ये मन बुद्धि के ऊपर ही निर्भर करते हैं। जिस समय मन बुद्धि सक्रिय होती है और बाह्य शरीर से इंद्रियों के होकर के बाह्य जगह से हमारा संपर्क हो रहा होता है उस समय ये है जागृत अवस्था कहलाती है। जब बाह्य जगह से हमारा संपर्क नहीं होता लेकिन मन बुद्धि कार्य करते हैं तब उसका नाम स्वप्न होता है, और जिस समय मन बुद्धि कार्य नहीं करते हैं, इनकी वृत्तियां स्थगित हो जाती हैं, उस समय सुषुप्तावस्था होती है, डीप स्लीप। ये आप कहते हैं देखो अपने हृदय में स्थित रहते हुए इन सबको देखो, अपने मन बुद्धि को देखो, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उसको देखो, अपने अंदर ज्ञान संग्रहित है उसको देखो, ज्ञान का स्मरण हो रहा है उसको देखो, आप अपनी जागृतावस्था को देखो, स्वप्नावस्था को देखो, सुषुप्तावस्था को देखो, ये सब अनुभव करो। और ये भी करो कि यही परमात्मा भी हृदय विद्यमान है और वही सब इनको प्रकाशित कर रहा है, उसी की शक्ति से ये ज्ञान शक्ति सब कार्य कर रही है, इस प्रकार से देखो। अब इतनी देखने के बाद में अब थोड़ा भगवान वही हृदय में ही रहते हैं और वही हृदय में रहते हुए उत्साहित करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब पहली बात तो यहां पर ये समझ लेनी चाहिए कि अब इस हृदय में जो परमात्मा विद्यमान है वही परमात्मा परम प्राप्तव्य है। हमारे जो कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहम् यो वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा हम ही एकमात्र अंत में जानने योग्य हैं। विद्या माने जो जानने योग्य हो, किसे जानना चाहिए, परमात्मा को जानना चाहिए। और जितने ज्ञान है वो तो रास्ते के पत्थर हैं। अंत में जहां हम रास्ता पार करते हुए पहुंच गए तब हमें उसे परमात्मा की हमें प्राप्ति हो गई। एक तो वेद का नाम है जो प्रसिद्ध आसज्ञान के चार वेद हैं, ऋग्वेद सामवेद ऋचद, ये चार वेद हैं। ये इन चारों वेदों का अंतिम तात्पर्य परमात्मा को प्राप्त कराना है। एक अर्थ तो ये है, इसी को पहले समझ लो। चार वेद उनको जानो और चारों वेदों में चाहे आपका स्तुतियां हो, चाहे कर्मकांड हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे उपासना हो, चाहे कुछ भी हो, उन वेदों में वो सब बातें इस प्रकार से कही गई हैं जिससे कि वो व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ अंत में परमात्मा तक पहुंच जाए। देखो शुभ शुभ कर्म करने के लिए वेद कहते अशुभ कर्म करो, शुभ कार्य करो, और शुभ कार्य करने तक ही नहीं छोड़ देते कि शुभ कर्म यज्ञ कराने के लिए कहते हैं। और जब यज्ञ करने के लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं यज्ञ करने के लिए? क्योंकि उनका भी तत्काल तो पहले बताएंगे, देखो यज्ञ करोगे तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, यज्ञ करोगे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, यज्ञ करोगे तुम्हें धन, बोलते थे इस प्रकार के। लेकिन उनका प्रयोजन क्या है उसके पीछे? यदि तुम यज्ञ करोगे तो यज्ञ के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य जागृत होगी कि तुम ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। प्रयोजन वही है उसका। जो लोग ये समझते हैं कि यज्ञ का तात्पर्य स्वर्ग प्राप्त कराना है, पुत्र प्राप्त कराना है, इतना ही मात्र है, ऐसे पंडित लोगों की भगवान ने निंदा की, दूसरे अध्याय में निंदा कराए। कहते देखो ये भी कोई बात है, यज्ञ करो यज्ञ करो, स्वर्ग जाओ, बस यही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं, ऐसे कैसे? वास्तव में इन सबके बाद में इन सबका अंतिम उद्देश्य परमात्मा को ही प्राप्त करना है। उसमें जो कर्मकांड है वो कर्मकांड लगता है कर्म के द्वारा, लोक लोकांतरों की प्राप्ति कराना ही उसका फल है, लेकिन लोक लोकांतरों की प्राप्ति कराना उसका फल नहीं है, उसका फल है परमात्मा की प्राप्ति कराना। जैसे कोई छात्र स्कूल में पढ़ता हो, उसने छठवां दर्जा पास किया, आठवां दर्जा पास किया, तो ये तमाम दर्जे क्यों पास करने पड़ते हैं? अगर ये दर्जे सब इन दर्जों को पास करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये पास कर ले, एमए पास कर ले, इसीलिए तो सब कक्षाएं पास करने पड़ती। लेकिन जिस समय छात्र पढ़ रहा होता है उस समय छठवें में पढ़ रहा होता तो यही उसे सुझाया जाता है कि देखो तुम छठवें पढ़ते, तुम ये पढ़ो, परीक्षा में पास हो और फिर हो जाना, पास होना, अच्छे नंबरों में पास होना, जैसे कि मैंने छठवें ही दर्जा सब कुछ हो, उसी में सब उसका ध्यान केंद्रित करा देंगे। उससे ये नहीं कहेंगे छठवां दर्जा तुम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आखिर हमें पढ़ना है तुम्हें, छठवें ही दर्जा सब कुछ है, बस उसी को पढ़े रहो। इसी प्रकार से इसमें साधना में भी जो साधना कराई जाती है, किसी भी प्रकार की साधना हो वो ऐसे कराई जाती है, मानो वही सब कुछ है, क्योंकि ऐसा नहीं मानेंगे तो उसमें मन लगा करके साधना व्यक्ति नहीं करेगा, उसमें दृढ़ता नहीं आएगी। इसलिए मन लगा करके साधना करने के लिए उसी की प्रधानता बता रहे थे, उसी की महिमा बोलते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि उसके बाद फिर वो सब वेद अंत में वेदांत बन जाते हैं, और वेदांत उपनिषद बन करके फिर परमात्मा का ज्ञान कराते हैं, और व्यक्ति फिर उन्हीं के सहारे से अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लेता है। एक बात ये भगवान का कहना है। दूसरी बात ये कहनी है कि अब अपना हम भगवान कहते हैं अब हमने तुमको हृदय तक पहुंचा दिया, उपासना करते करते हृदय में जो मन बुद्धि की ज्ञान शक्ति है वो ज्ञान शक्ति मैं ही हूं ये तुमको बता दिया, ये जाकर के वहां उपासना करो। लेकिन अब क्या करो तुम कि अब इस उपासना के साथ साथ हृदय में पहुंच करके परमात्मा को खोजो भी। ये रखिए लक्ष्य रखो कि अब यहाँ परम हृदय तक पहुंच जाना हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा लक्ष्य हृदय में पहुंच करके परमात्मा तक पहुंचना, तो परमात्मा भी हमारे हृदय में उद्घाटित हो, प्रकट हो, देखने में आवे, अनुभव करने में आवे, ये ध्यान रखो। इसलिए भगवान उत्साहित करते हैं वेदे से सर्वै अहमेव वेद्यो, परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो इसके साथ भगवान एक बात और कहते हैं, वेदांत कृत, इस वेदांत की रचना किसने की? वेदांत के मन उपनिषद, वेदों की रचना, वेदों की रचना के बाद फिर उपनिषदों की रचना, ये सब किसने की? ये मैंने ही की। अगर परमात्मा ने ही उपनिषदों की रचना की तो उपनिषदों में जो ज्ञान है वो किसका ज्ञान है? परमात्मा का ज्ञान। अब परमात्मा ही का ज्ञान अगर परमात्मा स्वयं बता रहा हो हमको कि देखो हम तुम्हारे हृदय में इस रूप में बैठे हुए हैं, हमारा आकार ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, हमारे लक्षण इस प्रकार के हैं, हमको पहचानो, देख लो, हा? अगर वो बता रहा हो तो आपको उसमें संदेह करने की क्या गुंजाइश है? कोई संदेह करने की जरूरत है। आप उसी प्रकार जैसे बता रहा हो उपनिषद वैसे ही अपने हृदय में देखो। ये कहते हैं कि वेदांत कृत और वेद विदेव चाहम, और वेदों का जानने वाला वो कौन है? तो वो भी नहीं। जब व्यक्ति जो है वो हो, इसमें तीन बातें कहकर के एक बात ये भी बता दी भगवान ने कि जो पहले जीव था वही हृदय में परमात्मा को खोजते हुए परमात्मा स्वरूप हो जाता है। पहले उसने वेद पढ़े लेकिन वेद पढ़ करके वो वेद को जानता नहीं है। जब वो हृदय में परमात्मा खोजते खोजते परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और ये जान लेता है कि ये परमात्मा ही अपना वास्तविक स्वरूप है, तब उसको फिर मालूम होता है कि वेद में क्या लिखा था और उसका तात्पर्य क्या है। अभी तक हम जिस वेद को पढ़ते रहे उसका क्या प्रयोजन था, क्या भाव उसका है? जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ठीक ठीक वैदिक ज्ञान या उपनिषदीय ज्ञान या वेदांत ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता। इसलिए वेदांत ज्ञान के द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होने पर ही वेदांत का ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान और परमात्मा दो वस्तुएं नहीं है। जो परमात्मा का ज्ञान है वही परमात्मा। विचित्र इसीलिए ये ज्ञान अपने ढंग का अनोखा ज्ञान है। संसारी अन्य ज्ञान जैसे हैं, भौतिक ज्ञान है, उस प्रकार का ज्ञान नहीं है। जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स, इनके जैसे ज्ञान है वैसा ज्ञान ये नहीं है। ये ज्ञान अपने विशेष प्रकार का ज्ञान है, इसके लक्षण भी एक अलग ढंग के अपने हैं। कोई देहाभिमान रख करके वेदांत को जानना चाहे तो नहीं जान सकता, जीव भाव बनाए रख करके वेदांत को जानना चाहे तो नहीं जान सकता। जब वो जीव भाव से भी ऊपर उठ करके आत्मभाव में आवे तब उसे वेदांत का ज्ञान हो, लेकिन आत्मभाव में आवे कैसे? वेदांत ज्ञान से जाए तो पहले वेदांत ज्ञान हो कि पहले आत्मज्ञान हो? पहले वेदांत ज्ञान हो तब आत्मज्ञान हो, लेकिन आत्मज्ञान होने पर जो वेदांत ज्ञान होगा वो विज्ञान होगा। पहले जो वेदांत ज्ञान कराएगा वो ज्ञान कराएगा। ये जो पहले वेदांत के द्वारा ज्ञान हुआ, उपनिषदों के द्वारा हुआ, ये ज्ञान हुआ, और जब व्यक्ति ने आत्मभाव परमात्म भाव को प्राप्त कर लिया तब ये ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। इस प्रकार से इसको देखो। अब ये सब जो है यहाँ पर कह दिया कि जो उपासना थी अब यहाँ ज्ञान रूप धारण कर लेगी। तो पहले जो उपासनाएं स्थूल उपासनाएं हुआ करती हैं, आदि भौतिक उपासनाएं होती वो आदिदैविक बन जाती हैं, जो आदिदैविक होती हैं वो आध्यात्मिक बन जाती हैं, और आध्यात्मिक उपासना फिर आध्यात्मिक ज्ञान बन जाता है। उपासना ही अपनी पूर्णावस्था में आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान का रूप धारण कर लेता है। इसलिए उपासना जो है सहायक है, उपासना अवश्य करनी चाहिए, उपासना ही वहां तक हमको पहुंचाती है। अब इसके आगे जो है यह का जो प्रसंग आता है उसमें भगवान ये बताते हैं कि देखो अपने हृदय में ठहर करके आप खोजो परमात्मा को, तो वहां आपको हृदय में क्या क्या मिलेगा वो सब बताते हैं, और जो जो आपको मिलेगा वहां वहां से आप उनको छांटते जाओ, छटाई करते जाओ और परमात्मा तक पहुंच जाओ। हृदय में सब है, हृदय में प्रकृति भी है, हृदय में जीव भी है, ज्ञान भी है, मृत्युयां भी हैं, फिर हृदय में फिर वो है परमात्मा भी है, तो अपने हृदय में इन सबको देखते रहो।